Iran Radio Podcast.
ونیزویلا کے تاناشاہ جنرل گومیز کے 97 بچے تھے اور وہ ونیزویلا کو اپنی اور اپنے پریوار کی نجی سمپتی سمجھتے تھے۔ دوستو، دنیا کے اتہاس پر پوڈکاسٹ کا یہ 49واں ایپیسوڈ ہے۔ ایران ریڈیو سے میں ہوں احمد عباس، آپ سبھی کو میرا سلام۔ ہم بات کر رہے تھے وینیزویلا کے تاناشاہ جنرل گومیز کی۔ گومیز کو پیسے سے بڑا لگاؤ تھا۔ جب تیل کھوجنے والی کمپنیوں نے انہیں سمجھوتے کا پرستاو دیا تو انہوں نے خوشی سے سویکار کر لیا۔ وینیزویلا کے پاس تیل کے وشال بھنڈار ہیں، اسی وجہ سے تیل کی کھوج کے بعد وہ جلد ہی تیل اتپادن کرنے والا دوسرا دیش بن گیا۔ جنرل گومیز کی موت کے بعد ان کے ویرودھیوں نے ستا سنبھال لی۔ نئی سرکار نے گومیز پریوار کے بھرشٹاچار اور تیل کی کمپنیوں کی لوٹ مار پر لگام لگائی۔ امریکہ کو ڈر تھا کہ کہیں میکسیکو کی طرح وینیزویلا بھی تیل کا راشٹریہ کرن نہ کر دے، اس لیے اس نے تیل کمپنیوں سے کہا کہ وینیزویلا کی نئی سرکار کے ساتھ سنتولن استھاپت کریں۔ سن 1943 میں، یعنی ٹھیک اس سمے جب دوسرا وشو یدھ چرم پر تھا، امریکہ کی تیل کمپنیاں تیل سے ہونے والی آمدنی میں وینیزویلا کی سرکار کی بھاگیداری بڑھانے کے لیے تیار ہو گئیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سمجھوتے کی اودھی لمبی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وینیزویلا کی سرکار نے سمجھوتے پر دستخط کر دیے، جس کے آدھار پر دونوں پکشوں کی لابھ میں برابر کی حصے داری طے پائی۔ دوسرے وشو یدھ کے بعد وینیزویلا کے وشیشجوں نے عرب دیشوں کا رخ کیا تاکہ 50-50 سمجھوتے کے بارے میں انہیں اوگت کرائیں اور انہیں بھی یہ راستہ دکھائیں۔ سعودی عرب، کویت اور عراق میں وینیزویلا سرکار کے پریاس سفل رہے۔ ان دیشوں نے 1950 اور 1952 میں اپنے سمجھوتوں میں بدلاؤ کیا اور لابھ میں اپنی حصے داری بڑھا کر 50% کر دی۔ دوسری اور تیل کمپنیوں نے لمبی اودھی کے سمجھوتے کر کے خوب لابھ کمائے۔ ایران میں بھی یہی کچھ ہوا۔ ایران میں تیل کے راشٹریہ کرن کے بعد امریکہ دوارا تختہ پلٹ کی ناکام کوشش ہوئی، جس کے بعد تیل کمپنیوں نے ایرانی شاہ کے ساتھ 50% ساجھے داری کے سمجھوتے پر ہستاکشر کیے۔ برٹین، نیدرلینڈز، فرانس اور امریکہ اس سمجھوتے میں بھاگیدار تھے۔ ایک اطالوی پونجی پتی اینریکو میتی بھی ایرانی تیل میں بھاگیداری چاہتے تھے، لیکن انہیں اس سے باہر کر دیا گیا۔ میتی ایک بڑی تیل کمپنی اینی کے مالک تھے۔ جب ایران میں تیل کے راشٹریہ کرن کے بعد امریکہ اور برٹین نے ایران پر پرتیبندھ لگا دیے تھے، تو اینی نے ایران سے تیل کی ایک بوند بھی نہیں خریدی تھی۔ اس کے باوجود اب اس کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میتی نے تیل کی بڑی کمپنیوں سے بدلہ لینے کے لیے ایرانی شاہ سے نزدیک ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہیں پتا تھا کہ شاہ اپنی پتنی سے الگ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس سے کوئی سنتان نہیں تھی اور اب ایک نئی پتنی کی تلاش میں ہیں۔ یورپ کی شاہ کی ایک یاترا کے دوران میتی نے ایک اطالوی پرنسس سے شاہ کی ملاقات کا پربندھن کیا۔ ملاقات کے بعد دونوں ہی شادی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایک سمسیا تھی۔ ایرانی شاہ کی پتنی کا مسلمان ہونا ضروری تھا، جبکہ اطالوی پرنسس کٹر عیسائی تھی۔ یہ شادی تو نہیں ہو سکی، لیکن میتی شاہ سے نزدیک ہونے میں سفل ہو گئے اور انہوں نے شاہ کے سامنے تیل کا ایک اچھا پرستاو رکھا۔ اس پرستاو کے تحت ان کی کمپنی ایران کے ان تٹی علاقوں میں تیل کی کھوج کرنے کے لیے تیار تھی جو انیہ تیل کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتے میں شامل نہیں ہیں۔ اس پرستاو کے مطابق میتی کی کمپنی تیل کا 75% لابھ ایران کو دینے کے لیے تیار تھی۔ دوسرے تیل سمجھوتوں کے مقابلے میں یہ پرستاو کافی آکرشک تھا۔ شاہ نے میتی کا پرستاو سویکار کر لیا اور سمجھوتے پر ہستاکشر ہو گئے۔ جب اس سمجھوتے کی خبر پھیلی تو بڑی تیل کمپنیوں کو جھٹکا لگا اور تیل بازار میں اتھل پتھل مچ گئی۔ کمپنیوں کے مالکوں نے میتی سے کہا، تم ہم سے پھروتی وصول کرنا چاہتے ہو؟ میتی نے جواب دیا، ہاں۔ मैं ईरान अनुबंध में 5% और आरामको में 10% हिस्सा चाहता हूँ। कोई भी इतनी भारी फिरौती देने के लिए तैयार नहीं था। तेल कंपनियों को पता था कि अगर वो इतालवी तेल कंपनी के सामने झुकेंगी तो बेल्जियम और जर्मन कंपनियां भी मैदान में कूद पड़ेंगी। मैती का समझौता फारस खाड़ी के तटों से संबंधित था, जहां अभी तक ज़्यादा मात्रा में तेल नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने ऐसे ही प्रस्ताव अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी दिए और अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अब वो 50-50 समझौते का अहम प्रतिद्वंद्वी बन गया था। तेल कंपनियों को मालूम था कि तेल उत्पादक देश अब बहुत ज़्यादा समय तक 50-50 समझौतों पर बाकी नहीं रहेंगे। मैती सभी महाद्वीपों में अमेरिकी और ब्रिटिश तेल कंपनियों से संघर्ष में व्यस्त थे, लेकिन इसका सबसे अधिक असर यूरोप के हृदय स्थल पर पड़ा। उन्होंने 1960 में सोवियत संघ की यात्रा की और वहां से $15 प्रति बैरल की दर से तेल खरीदा, जो विश्व तेल मूल्य से $10 सस्ता था। मैती ने मध्य यूरोपीय देशों को सस्ता सोवियत तेल बेचा और अमरीकी और ब्रिटिश कंपनियों से बाजार छीन लिया। उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इन कंपनियों को अपने तेल की कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन कीमतों में कटौती से अरब देशों और ईरान में असंतोष पैदा हो गया, क्योंकि तेल की कीमतों में कमी के साथ उनकी रॉयल्टी भी कम हो गई। सोवियत संघ के बाद मैती ने अल्जीरिया का रुख किया। उस समय अल्जीरियाई फ्रांसीसी कब्जे के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने संघर्षरत सेनानियों में भविष्य देखा और फ्रांस के साथ बातचीत के बजाय अल्जीरियाई सेनानियों के साथ बातचीत की। जनवरी 1962 में एक दिन एनरिको मैती को एक पत्र प्राप्त हुआ। लिखा था, आपको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। OIS द्वारा हस्ताक्षरित। OIS पुराने फ्रांसीसी सैनिकों का एक समूह था जो दूसरों की तुलना में अधिक हिंसक व्यवहार करता था। वे अल्जीरियाई लोगों को यातनाएं देते थे और उनका नरसंहार करते थे, और फ्रांसीसी सरकार से इस बात के लिए नाराज़ थे कि वो अल्जीरियाई लोगों के प्रति पर्याप्त कठोर रवैया नहीं अपना रही है। मैती ने इस धमकी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद उनका निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मौत हो गई। क्या इस दुर्घटना में OIS का हाथ था? क्या मैती को मिलने वाला पत्र तेल कंपनियों की ओर से महज धमकी नहीं थी? ये गुत्थी कभी नहीं सुलझी। इटली में मैती की हत्या कर दी गई। ईरान में तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के आंदोलन को तख्तापलट और दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन बड़ी तेल कंपनियों की समस्याएं खत्म नहीं हुई। इस बार मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का झंडा उठाया। ये नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती थी, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अंग्रेज़ों के कब्जे में थी और प्रतिदिन 70 बड़े जहाज़ इससे होकर गुजरते थे। जमाल अब्दुल नासिर ने घोषणा की कि स्वेज नहर और इससे प्राप्त होने वाली सभी लाभ और रकम अब मिस्रियों की होगी। इंग्लैंड, फ्रांस और ज़ायनी शासन ने एकजुट होकर मिस्र पर हमला कर दिया। अमेरिकियों ने इस युद्ध में प्रवेश नहीं किया और अरब देशों ने इस युद्ध में विरोध में इंग्लैंड और फ्रांस को अपना तेल निर्यात बंद कर दिया, जिसके कारण जमाल अब्दुल नासिर की जीत हुई। 1959 में उन्होंने तेल उत्पादक देशों के प्रतिनिधियों को अधिक सहानुभूति और सहयोग के साथ अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए काहिरा में आमंत्रित किया। उन्होंने तेल की कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए एक संगठन के गठन और 50-50 की साझेदारी को 60-40 में बदलने का प्रस्ताव रखा, लेकिन एक साल बाद तेल कंपनियों ने कीमतें फिर कम कर दीं। वे बड़े बाजारों की तलाश में थीं और तेल उत्पादक देशों की नाराज़गी की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। इस बार उत्पादक देश इराक में जमा हुए। 10 सितंबर 1960 को इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान और वेनेजुएला ने बगदाद में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस संगठन की जिम्मेदारी कीमतों में संतुलन बनाए रखने, प्रत्येक देश के लिए उत्पादन कोटा निर्धारित करने और कंपनियों को संबंधित निर्णयों के लिए निर्यातक देशों से परामर्श करने के लिए बाध्य करना था। OPEC की स्थापना के साथ ही प्रमुख तेल कंपनियां, जो पहले इन देशों पर ध्यान नहीं देती थीं और अपनी मर्जी से कीमतें घटाती बढ़ाती थीं, उनसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गईं। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ अमेरिका ने इनमें से कई देशों को भेजे संदेश में कहा, अगर आप हमारे अब तक के कार्य से असहमत हैं तो हम क्षमा चाहते हैं। अब से हम किसी भी मामले में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, आपकी राय का समर्थन करेंगे। भले ही हमें यकीन हो कि हमारा फैसला सही है, हम सम्मानपूर्वक आपकी राय स्वीकार करेंगे और अपने फैसले को बदल देंगे। तेल की खोज हुए काफी समय गुजर चुका था और अब इस माफी का कोई मतलब नहीं था। तेल उत्पादक देश थोड़े थोड़े समय पर कोई नया प्रस्ताव देते थे और लाभ में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करते थे। 1970 में ईरान ने लाभ के 55% की मांग रखी। वेनेजुएला ने एक कदम और आगे बढ़कर 60% की मांग रखी। उसके एक साल बाद ईरान ने मांग कर डाली कि हर बैरल तेल की कीमत में 25 सेंट का इजाफा किया जाए। अल्जीरिया और लीबिया ने जब ये देखा तो सीधे 90 सेंट की वृद्धि की मांग कर डाली। इन देशों की तेल के राष्ट्रीयकरण या तेल निर्यात बंद करने की धमकी के सामने तेल कंपनियां भी मजबूर थीं। अब तेल उत्पादक कई देश तेल का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। इराक ने तेल के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। वेनेजुएला ने कानून पारित किया जिसके तहत अनुबंध समाप्त होने के बाद सभी तेल सुविधाओं के साथ साथ कंपनियों के संसाधन और संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लीबिया ने अपने तेल उद्योग के एक बड़े हिस्से का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। कुवैत ने भी अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियों को मुआवजा देकर तेल का राष्ट्रीयकरण करके उनके साथ अपना अनुबंध तोड़ दिया। लेकिन ईरान में कुछ और ही हुआ। एक नया अनुबंध तैयार किया गया जिसके अनुसार ईरान के पास अपना तेल होगा, लेकिन पहले उसे अपने तेल की बिक्री उन कंपनियों को करनी होगी जो अनुबंध में शामिल थी और वो उनके लिए कीमतों में छूट देने पर भी विचार करेगा। कंपनियों को छूट पर तेल बेचने की वजह से ईरान को जापान या भारत जैसे देशों को सीधे तेल बेचने से रोका गया, जो लंबे समय से उससे तेल खरीद रहे थे। खरीदारों को ईरानी तेल अमेरिकी और ब्रिटिश तेल कंपनियों से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर तेल कंपनियों के विशेषज्ञ ईरान में ही रहे और कंपनियां ठेकेदार के नाम पर तेल निकालने का काम करती थीं और इस काम के बदले में उन्हें ईरान से भी कुछ धन प्राप्त होता था। 7 साल बाद 1980 में सऊदी अरब ने भी आरामको के साथ एक ऐसा ही अनुबंध कर डाला। जब 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति सफल हुई तो नई सरकार ने तेल समझौते को रद्द करने का ऐलान कर दिया। नई सरकार का कहना था कि ईरान में तेल ईरानी कंपनियों की ओर से निकाला जाएगा और वो खुद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे बेचेंगी। तेल कंपनियों के कर्मचारी ईरान छोड़कर चले गए और उन कंपनियों ने हेग की अदालत में ईरान के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। 12 साल तक यह मुकदमा चला। अंत में ईरान ने अनुबंध तोड़ने के लिए कंपनियों को मुआवजे का भुगतान किया जो उनके द्वारा मांगी गई राशि से काफ़ी कम था। तेल की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हालांकि ज़ाहरी तौर पर तेल पर उत्पादक देशों का अधिकार है, पश्चिमी देशों ने तेल उत्पादक देशों से पैसे ऐंठने के लिए नए तरीके खोज लिए हैं। अधिकांश तेल समृद्ध देशों के पास कोई अन्य उद्योग या उत्पादन नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी ज़रूरत की चीज़ें विदेशों से ख़रीदनी पड़ती थीं। इन वस्तुओं के उत्पादक वही थे जो तेल के ख़रीदार थे। वे तेल उत्पादक देशों को अपना माल बेचकर तेल के लिए चुकाई गई राशि वापस हासिल कर लिया करते थे। कई तेल निर्यातक देश कुओं से निकलने वाले कच्चे तेल को औद्योगिक देशों को बेच देते हैं और फिर उनसे पेट्रोल जैसे उत्पाद बहुत ऊंचे दामों पर खरीदते हैं। ये तेल खरीदने के लिए किए गए भुगतान को वापस पाने का एक और तरीका है। पश्चिमी देश तेल बाजार को नियंत्रित करने और कीमतें कम रखने का एक और तरीका अपनाते हैं। वो ओपेक सदस्यों के बीच मतभेद और विभाजन पैदा कर देते हैं। वही पुरानी नीति, यानी फूट डालो और राज करो। पश्चिमी देशों का एक दूसरा हथकंडा युद्ध है जिससे तेल के लिए भुगतान की गई सारी राशि वो वापस खींच लेते हैं। पिछले 70 वर्षों में सबसे ज़्यादा युद्ध मध्य पूर्व में हुए हैं जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल भंडार हैं। इन देशों को युद्ध के लिए हथियारों की ज़रूरत होती है और वो हथियार खरीदने के लिए पश्चिमी देशों को अपना तेल बेच देते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का प्रयास होता है कि इन देशों में अपने समर्थकों को सत्ता तक पहुंचाएं ताकि वो अमेरिका और ब्रिटेन की नीतियों का समर्थन करें और उनसे हथियार खरीदें। इसके अलावा ओपेक में इन सरकारों के प्रतिनिधि ऐसी कीमतों का प्रस्ताव रखते हैं जो पश्चिमी देशों के हितों के मुताबिक हों। ये सरकारें तेल बेचकर जो पैसा कमाती हैं उसे पश्चिमी देशों के बैंकों में रखती हैं या वहाँ के उद्योगों में निवेश कर देती हैं। اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب ان دیشوں کی سوچی میں سب سے اوپر ہے جنہیں امریکی ہتھیار نریات ہوتے ہیں۔ 2013 اور 2017 کے بیچ سعودی عرب نے امریکہ سے 9 بلین ڈالر کے ہتھیار خریدے۔ اس دیش نے اکیلے 2020 میں لگ بھگ 3.5 بلین ڈالر کے ہتھیاروں کا بھنڈار جمع کیا، جو انیہ 5 پرمکھ گراہکوں آسٹریلیا، بٹین، اسرائیل، عراق اور سنیکت عرب امیرات دوارا واشنگٹن سے خریدے گئے ہتھیاروں کے کل مولیہ سے ادھک ہے۔ حالانکہ یہ آنکڑے اس سمے کے ہیں جب زائنی شاہ سے غزہ یدھ شروع نہیں کیا تھا۔ امریکہ کی ودیش معاملوں کی پریشد نے ایک رپورٹ میں کہا کہ غزہ یدھ کے دوران امریکہ نے اسرائیل کو 31 ارب ڈالر کی سینے سہایتا کی ہے، جو اسرائیل کی استھاپنا سے اب تک ابھوتپورو ہے۔ یہ مدد ابھی بھی جاری ہے۔ دوستو، جو پوڈ کاسٹ آپ نے سنا وہ ایران ریڈیو دوارا تیار کیا گیا تھا۔ اگر اور بھی پوڈ کاسٹ آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے، iranradio.ir/hi۔